आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बा बा वाह वाह बा 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 वाह बा बा वाह वाह बा बा बा
ओम शांति। बाबा की दिलरुबा है ना, अभी सुना कि आप सबने दोपहर में सुना। अब हम कन्हैया की कन्याएं हैं, आप वो कन्याएं हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट परमात्मा पिता की नजर पड़ी और उसने दुनिया की इन करोड़ों कन्याओं में से आप सब कन्याओं को अपना बनाया। उसने अपना बनाया या आप उसके बने, उसने अपना बनाया तो सोचो उसकी पसंदगी कैसी होगी, हाईएस्ट। तो आप सब कौन हुए, ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं जिन्होंने कुमारी जीवन तो है लेकिन इस कुमारी जीवन में अपने आप को ब्रह्मा कुमारी बना दिया। ब्रह्मा कुमारी ये साधारण बात नहीं है, हमें इस चीज का नशा है। मैं एक बार, आप लोग में से किसी ने नाम सुना होगा, गुजरात के अंदर एक इंदिरा बेटी करके वैष्णव संप्रदाय की, बहुत नशे से वो कथाएं सुनाती थी। तो हम लोग उनको मिलने के लिए गए, श्री कृष्ण की वो भक्ति, उसको श्री कृष्ण का एक फोटो फ्रेम भेंट किया, बहुत खुश होकर के ऐसे चूमा, आंख से लगाया, गद्दी पर रखा, तो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे आराम से ऐसे गद्दी पर, वो लोग पान बीड़ा खाते हैं ऐसे बैठी हुई थी। इतने नशे से कहती है, कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी हो ना, मैं भी वैष्णव कुमारी। ये था नशा, मैं ये हूं उसका रियलाइजेशन। हमें सचमुच में ये नशा है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। हाथ खड़ा करेंगे, नशा है, नशा है। हाँ जी, अच्छा। नशे की निशानी क्या है, निश्चय। किस में निश्चय, बाबा में निश्चय। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, सबको बाबा में निश्चय है। अभी आप कहेंगे ये कोई पूछने का प्रश्न है, अगर निश्चय नहीं होता तो हम यहां भट्टी में कैसे होते। एक है निश्चय और दूसरा है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। निश्चय क्या है, बाबा आ चुका है, बाबा हमें पढ़ा रहा है, हम बाबा के बच्चे हैं, ये निश्चय है। इसमें दो मत नहीं है, जैसे सबने ब्रह्मा कुमारी में हाथ ऊंचा किया। लेकिन संपूर्ण निश्चय बुद्धि वो हम हैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि हमारी मम्मा थी, बाबा थे। हमारा निश्चय मम्मा और बाबा जैसा है, 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 अंतर है, अंतर है, है। अब ये जो आपकी महसूसता है कि बाबा मम्मा के निश्चय में और हमारे निश्चय में अंतर है, उस अंतर को पहले रियलाइज करो, और रियलाइज करने के बाद उस अंतर को मिटाओ। जब तक अंतर को समझा है, मिटाया नहीं है, तब तक बाबा के समीपता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय का आधार निश्चय है। और निश्चय का मतलब बाबा ने जब कहा, जो कहा, जैसे कहा, उसमें संपूर्ण निश्चय। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ये शब्द निश्चय बुद्धि आत्मा के नहीं है। कल हमारी मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस है, इस बात में अगर हम मम्मा को याद करें तो कभी मम्मा को किसी भी बात में ऐसे हुआ कि ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, हुआ? मम्मा को हमेशा क्या निश्चय था, उसने कहा है तो होना ही है। हम क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, परंतु चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, हम ऐसा बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बोलिए, संशय। तो संशय बुद्धि विनिशयंती, कभी भी हमने जो लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा तो एक शे बाबा, दूसरा ना कोई, ये हम सबने पक्का किया है, सबने पक्का किया है, हमारा एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ये हमारा संपूर्ण निश्चय है, ये निश्चय माना ही बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति सहज। समझा? अनुभूति मुझे किससे करनी है सर्व संबंधों की? एक बाबा से। और एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा ही मेरा आधार है, एक बाबा ही मेरा प्यार है। अगर ये हमारा पक्का है तो हम सहज बाबा से अनुभूति कर सकेंगे। आज हम चर्चा करेंगे, एक है सर्व संबंधों की अनुभूति के विषय में सुनना, कैसे कर सकते हैं वो सुनना, जानना। दूसरा है सर्व संबंधों की अनुभूति करना। आप क्या चाहेंगे? करना। करने के लिए मुझे एक बार दादी जानकी की, एक बार दादी के साथ बैठी थी तो दादी को कोई मिल रहे थे, कोई वीआईपी थे, वो शिविर करके आए थे। तो बड़े खुशी से अनुभव सुना रहे थे, अब तक आत्मा को नहीं जाना लेकिन अभी यहाँ आत्मा के बारे में सुना, आत्मा का बड़ा अच्छा अनुभव किया। तो दादी जानकी ने उसको पूछा, कहती है तुमने दिमाग से अनुभव किया या दिल से? सोचने लगा, दादी को कहा दिमाग से, तो दादी ने कहा अब तुम्हें दिल से याद करना है। दिमाग क्या है? माना हम जो पुरुषार्थ करते हैं, हमने सुना, टीवी में देखा, कहां पढ़ा, तो आज मेरा सम्मान है, बस बाबा मेरा साथी है, तो उस साथी के लिए जो जो विधियां बताई वो हमने पढ़ी और उस संकल्पों से हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर दिल से वो मेरा साथी है तो मुझे पढ़कर के या कमेंट्री के आधार से साथीपन का अनुभव करने की जरूरत होगी? होगी? नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने दिल से बात करो बाबा के साथ में, और बार बार उस चीज को पूछो, तुम्हारे दिल में बाबा है? अगर इस दिल के अंदर दूसरा कोई भी है, कोई भी दूसरा है, तो बाबा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मिलन के लिए उसको बीच में एक शब्द हम देते हैं योग। योग में हम बाबा से संबंधों की अनुभूति करते हैं, योग के द्वारा ही करते हैं। अब योग क्या है? तो देह और देही का स्पष्ट अंतर महसूस करना, ये है योग की सर्वोच्च स्थिति। दूसरा बाबा कहता है, अगर आपको अंदरूनी नशा है तो अंदरूनी नशा भी योग की परिभाषा में आता है। अंदरूनी नशा, जैसे बाबा के लिए सुनते हैं, बाबा क्या कहता, वाह रे मैं, वो नशा था। भले बाहर पिकेटिंग हो रही है, लोग बाबा के नाम पर कैसा कैसा न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं, लोग बाबा को गालियां दे रहे हैं, लेकिन बाबा की स्थिति क्या थी? वाह रे मैं, क्या वो नशा था। उन परिस्थितियों का, विपरीत बातों का प्रभाव न पड़ना, ये है योग। ऐसे हम अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते करते, मैं आत्मा बाबा की हूं, तो बाबा के साथ का अनुभव करें। तीन बातें आती हैं, साथ, साथी और हाथ। जिसका साथ है उससे साथीपन की अनुभूति करना, अनुभव करना। आपने साथीपन का अनुभव किया है? साथीपन का अनुभव किया है बाबा से? किया है तो बाबा क्या कहता है? हर समय बाबा मेरा साथी है। जागृति बहन ने कहा कि मैंने अपने इस समर्पण जीवन की यात्रा दिल्ली से शुरू की, लेकिन मेरे समर्पण जीवन की यात्रा मधुबन से शुरू हुई है, और उसमें मैं आपको ये साथीपन का अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी। बहुत छोटी थी, 71 में मधुबन आई थी, दादियों को देखा तो ऐसे लगता था ये दादियां तो कितनी आगे हैं, और मुझे तो अभी योग करना भी नहीं आता है। तो दादी जानकी ने ये पाठ पक्का कराया था कि कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुम बाबा को कहना, कुछ भी चाहिए। मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरे को योग सीखना है, मुझे योग करना नहीं आता है। उसके लिए एक दिन मुरली चली तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे गुप्त रात को जाग करके पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा उनको बड़े अच्छे अनुभव कराता है। तो क्लास में मुरली सुनी तो ये चिंतन चला कि मुझे रात को जाग करके योग करना है और बाबा से ये साथीपन का अनुभव करना है। जब सब सो जाते थे उसके बाद बाबा के कमरे में बैठ करके बाबा से बड़ी जिगरी ऐसे बैठती थी, बस बाबा अभी तुझे मुझे योग सिखाना है। और सचमुच में मैं आपको ये अनुभव से कह सकती हूं, बाबा मेरे एक एक प्रश्न का जवाब देता था। चलते फिरते काम करते जो भी सेवाएं करती थी यज्ञ की, बस ऐसे लगता था कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया, छोटी थी फीलिंग आ जाती थी, अंदर में दुख हो जाता था, तो बाबा को बोलती थी, बाबा देखो इसने मुझे ऐसे बोला, और बाबा मुझे उसका जवाब देता था। ये था बाबा के साथ जिगरी प्यार, जिस प्यार ने ये महसूसता कराई कि बाबा मेरे साथ साथ है। इसके लिए अगर हमारे दिल में किसी के प्रति प्यार है, समझो मैं कहती हूं मैं तो अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती हूं, समझा, मेरा कोई गलत रिलेशन नहीं है, मम्मी है, मैं तो अपने घर के बिना नहीं रह सकती हूं। तो जिसके बिना नहीं रह सकती तो बाबा भी फिर क्या कहता है, जाओ बच्ची उसके पास। अगर हमारे दिल में कोई है साथी तो बाबा साक्षी हो जाता है, बाबा साथी नहीं रहता है। दूसरा, बुद्धि का सूक्ष्म अहम ये हमें साथीपन की अनुभूति नहीं करने देता। अगर कहां भी बुद्धि का अभिमान है, अपनी कोई गुण विशेषता योग्यता का अभिमान है, मैं किसी को ज्ञान समझाती हूं और सामने वाले मुझे ये कहते हैं कि आप तो समर्पित बहन से भी अच्छा समझाती हो, मुझे आता है देखा मैं कितना अच्छा समझाती हूं, कोई भी प्रकार का सूक्ष्म अहम ये हमें साथीपन का अनुभव नहीं करने देगा। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि को सेफ रख करके बाबा मेरा साथी है उसका आप अनुभव करते चलो, और उस अनुभव के लिए, साथी के लिए हमें हाथ देना पड़ेगा, और हाथ है श्रीमत का। बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत के अनुसार हम अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। आप देखो बाबा की पहली श्रीमत क्या है, पहली श्रीमत क्या है, अमृत वेले क्या करो, बाबा को याद करो, ये सब जानते हैं और करते भी होंगे, करते हैं, लेकिन आ जाता है। अगर यथार्थ श्रीमत का पालन करते हैं, उठते ही इस मन की आंख ने बाबा को देखा और बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ी, मैं बाबा के नैनों की छत्र छाया में चली गई, ये है साथीपन का अनुभव। एक है हम बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं प्रकृति के बीच में हूं, बाबा आप मेरे हो, आपसे मैं शक्ति ले रही हूँ, बाबा से शक्ति निकल रही है और इसमें समा रही है। ये है दिमाग की याद। दिल की याद क्या है? आंख खुलते ही। सोचो तो सही, दुनिया वाले जिसके लिए कहते हैं कि एक सेकंड के लिए इसका दर्शन हो जाए और मेरी आंख खुलते ही वो मेरे सामने ऐसे भुजाएं फैला करके खड़ा हुआ है, मैं उसमें समाई हुई हूं, इससे श्रेष्ठ भाग्य कुछ होगा? होगा। इस भाग्य को अगर आपने अनुभव किया है, बार बार स्मृति में लाओ, मैं और मेरा बाबा। कुछ भी है, फट से मेरी बुद्धि में बाबा आना चाहिए। बाबा मुझे यहाँ क्या करना है, बाबा मुझे ये चीज चाहिए, बाबा मुझे ये करना है। साथी है ना, मैं और आप दो साथ रहते हैं, तो बार बार आप बात किससे करेंगी? मेरे से करेंगी ना, क्योंकि मैं साथी हूँ। हम कहते जरूर हैं, लेकिन मुझे फट से कौन याद आता है? मेरी वो फ्रेंड हो ना, तो मैं उसको ये सुनाऊं। आज से आप ये पक्का करके जाओ, मैं हर बात सच्चे दिल से बाबा को सुनाऊंगी। आप बाबा को लेटर लिखो, बाबा आपको जवाब देगा। मेरा साथी मेरा बाबा है, अगर साथी मेरे साथ में है तो जरूर साथ निभाएगा। अगर मेरी बुद्धि भटकती है तो भी साथी मेरी बुद्धि को खींचेगा, लेकिन आप आधार अलग अलग नहीं बनाओ, उस साथी के साथ का अनुभव करो। उसके बाद बाबा कहते हैं, हमारा विशेष बाबा के साथ बाप, शिक्षक और सतगुरु का संबंध है, दूसरे संबंध बाद में। बाप रूप से बाबा जो परमात्मा प्यार की पालना दे रहा है, परमात्मा प्यार, उस प्यार की पालना की अधिकारी मैं आत्मा हूं। आप देखो, जैसे लौकिक में पिता होता है, उसे हमेशा चिंता होती है अपने बच्चों की, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगाएंगे, ये अच्छे से अच्छा बने, ये आगे बढ़े, उसके लिए उनका सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ है। बाबा को आप देखो, कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे गफलत मत करो, बच्चे ऐसा करो, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बार 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 बाबा हमें याद दिलाता है, याद दिलाता है ना। वास्तव में बाबा को याद दिलाने की जरूरत है मैं तुम्हारा बाप हूं, याद दिलाने की जरूरत है, लेकिन क्यों याद दिलाता है? बच्चे भूल जाते। बाबा हमारी जितनी चिंता करता है, इतनी चिंता हमें अपने लिए नहीं है। तो उस बाबा से जो हमें श्रेष्ठ वर्षे का अधिकारी बनाता है, हमेशा बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा वो राजा बच्चा बने। उस राजा बच्चे के लिए बाबा मेहनत करा रहा है, हमें बाबा बैठ करके पढ़ाता है, गुण और शक्तियों से हमें संपन्न बनाता है। इतना ऊंचा बाप जो इतनी अच्छी हमें प्यार की पालना दे रहा है, जिस प्यार की पालना ने हमें हमारी कमी और कमजोरियों से मुक्त कर दिया, इतना प्यार करेगा कौन? बाबा से हम प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी, चार दिन, छह दिन, आठ दिन, पंद्रह दिन, उसके बाद साधारण। बाबा से हमने मुरलियों में कितना बारी वायदे किए, आज के बाद हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, हाथ ऊंचे ऊंचे खड़े किए, झमेलों से मुक्त रहेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े किए, और फिर जब बाबा ने हमारे से चार्ट मांगा तो हमारा चार्ट क्या था, चार्ट हमारा क्या था, जो हमने कहा वो किया नहीं। फिर भी बाबा ने, तुम ही मेरे अधिकारी बच्चे हो, तुम ही स्वराज्य अधिकारी हो, तुम ही बनने वाले हो, इतना प्यार बाबा ने हमको दिया और आज भी बाबा दे रहा है। तो बाप के संबंध से हमें जो शिक्षाएं मिली हुई हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए सच्चे पिता की पालना का अनुभव हम कर रहे हैं, जो एक संगम पर ही हमें ये श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा बाबा ना हमें कभी मिला है ना ही कभी मिलेगा, पक्का है। तो बाबा से इतना पिता के प्यार की अनुभूति करते हैं, मेरा बाबा। बाप फिर शिक्षक बन करके हमको पढ़ाता है। हमने बाबा के साथ शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध जोड़ा है, जिन्होंने जोड़ा है हाथ खड़ा करेंगे। शिक्षक हर रोज पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। बाबा ने हमें त्रिनेत्री बनाया। त्रिनेत्री अर्थात बच्चे तुम ऐसे देवता थे, तो बाबा ने जब कहा तुम ऐसे देवता थे तो ये बुद्धि का नेत्र उस चीज को महसूस करता है कि हाँ मैं ये देवता थी, माना हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है कि हम ये थे। और फिर हम नीचे उतरे, नीचे उतरते उतरते अभी अंत में फिर से हम ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनेंगे। तो नेत्र ने क्या देखा, मैं थी, अब मैं फिर से बनूंगी, बन रही हूं, तो जो थी वही बनेगी ना। तो त्रिनेत्री बना करके त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया। और बाबा हर शिक्षाओं से ऐसा बच्चों को संवारता है, जिस शिक्षा से हम आत्माएं चरित्रवान बनती हैं। एक एक वैल्यूज को बाबा हमें पढ़ा करके हमारे जीवन को इतना ऊंचा बना रहा है। आपने हाथ खड़ा किया कि हम बाबा के साथ में टीचर और स्टूडेंट का अनुभव करते हैं। स्टूडेंट माना, स्टूडेंट माना, हाँ, आज्ञाकारी स्टूडेंट माना। पहले में पहले निशानी रेगुलर और पंक्चुअल। आप जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी तो जिस समय जिसका पीरियड हो उस समय जाए, स्कूल के अंदर में समय पर हमें पहुंचना है, पंक्चुअलिटी। मैं अभी देख रही थी, मैं आकर के बैठी तब बहुत थोड़ी बहने थी, धीरे 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 करते अभी क्लासरूम भर गया। आप तो ऐसे भी पढ़ने वाली कुमारियां हो, जॉब वाली भी होंगी। तो बाबा से शिक्षक के संबंध में हम क्या करते हैं, बाबा भले जब आकर के पढ़ाए, मुझे तो जब जाना है नहीं। रेगुलर और पंक्चुअल, ये हमारी बड़ी दीदी ने हमको सिखाया। आप मुरली क्लास में कब जाते हैं, क्लास का टाइम है 6 बजे का, आप 6:30 बजे जाओ, तो ये टीचर और स्टूडेंट की मर्यादा हमने निभाई नहीं। आज से ये पक्का करना, कर सकते हैं रेगुलर और पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी ये हमारे जीवन के लिए और ईश्वरीय मर्यादा में अलौकिक हम है। हम कोई वो चीला चालू स्टूडेंट थोड़े हैं। हमारी एक एक धारणा का प्रभाव पड़ता है, उससे वायुमंडल बनता है। तो बाबा आकर के पढ़ाए और स्टूडेंट पीछे से आए, ये ठीक है? नहीं तो छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं इस कमी को? हाथ खड़ा करो। खड़ा करने के लिए नहीं खड़ा करना, अगर आप कर सकते हो तभी खड़ा करना। और सच्चे दिल पर साहेब राजी, आपकी वो कमी हमेशा के लिए निकल जाएंगी। तो बाबा ने हमें जो पढ़ाया, नोट पेन लेकर के हम बाबा की मुरली को नोट करते हैं, सिर्फ नोट करने के लिए नहीं, नोट करने के बाद में उसको स्टडी करो। बड़ी दीदी बहुत अच्छा स्टडी करती थी, सिखाती थी हम लोग को। आज बाबा ने ये कहा तुमको मालूम पड़ा? तो कई बार सोचते थे क्या बाबा ने ऐसा कहा। इतना गहराई से बाबा मुरली चला रहा है और दीदी नोट करती थी। मम्मा के लिए हम सब ने सुना है, बाबा ऐसे संदली पर होता था और मम्मा ऐसे बैठ करके मुरली टक होकर के सुनती थी, जो सारी मुरली अंदर में, और फिर उसका मम्मा चिंतन करती थी। ये है टीचर और स्टूडेंट का संबंध, वो निभाना, वो मर्यादाएं हमारे जीवन में। तो ऐसे भी स्कूल में पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको हमेशा अपनी पढ़ाई और टीचर याद रहता है। हमने तो मुरली की नोटबुक बंद किया, दूसरे दिन जब सुबह क्लास में जाते हैं तब उस नोटबुक को खोलते हैं। करते हैं ऐसा? करते हैं? होता है। अच्छा, उस कॉलेज में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। और ये कॉलेज बड़ी है या वो कॉलेज बड़ी है? ये बड़ी है। तो समझ में तो हम परफेक्ट हैं, अब क्या करना है? प्रैक्टिकल करना। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दिल में बाबा को बिठाना ही पड़ेगा। बार बार बिठाने के लिए मैं अपने पुरुषार्थ में हमेशा जो आदर्श है उनको सामने रखते हैं। दादी कैसे करती है? दादी के सामने ये सारी बातें आती हैं। क्या इन्हों की स्टूडेंट लाइफ है आज की तारीख में? ये दादी जानकी इस एज में कितना बारी मुरली पढ़ती है, मुरली के लिए कितना प्यार। और हम बाबा की मुरली, अगर एक मुरली मिस हो जाएगी तो हम आगे पीछे होंगे, मेरी एक मुरली मिस हुई। और मुरली एक सुनने के बाद कितनी बातों को मिस कर देते, धारणा नहीं करते। टीचर से प्यार माना बाबा की मुरली से जिगरी प्यार। और जिसको बाबा की मुरली से जिगरी प्यार है उसे कभी भी अपना टीचर भूल नहीं सकता। और जब टीचर नहीं भूलेगा, मैं आपको अनुभव से कह सकती हूं, आपको हर प्रश्न का जवाब किसी से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टीचर आपको पढ़ाएगा। आप प्रैक्टिकल में इन संबंधों को जोड़ो, अनुभव करके देखो। बाबा परम सतगुरु कहते तो हम है हर रोज मुरली में। सतगुरु का काम क्या है? वरदान देकर, शक्ति देकर के हमें पावन बनाकर वापस घर ले जाता है। आप अमृत वेले में जब बाबा के सामने बैठे हो, सतगुरु से वो शक्ति, वो वरदान, जो वरदान हमें अशरीरी बनने में मदद करता है। घर कैसे जाएंगे? जैसे आत्मा गई थी वैसे आत्मा वापस घर जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही वापस घर जाएगी। हम आए थे तब कैसे थे? सत्व प्रधान थे, और सत्व प्रधान बन करके हमें जाना है। सत गुरु का निंदक ठौर ना पाए, ये रोज सुनते हैं ना, हमारे से ऐसा कोई कर्म न हो जिस कर्म से सतगुरु की निंदा हो। हम कर्म करते हुए बार बार अशरीरी अवस्था का अभ्यास करें। मूल आत्मा की जो स्थिति, मेरा जो निज स्वरूप है, वो है ज्योति बिंदु स्वरूप, वही हमारा स्वरूप है और उसी स्वरूप में स्थित होकर के हमको जाना है। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में उस सतगुरु के सामने बाबा मुझे वरदानों से झोली भर रहा है, वरदानों को यूज करना है। आपको याद होगा एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को वरदान देते हैं लेकिन बच्चे वरदानों को यूज नहीं करते हैं, और जब समय आवश्यकता पड़ती है तब उस वरदान को यूज करते हैं। तब तक वो वरदान वासी हो जाता है और वासी होने के कारण से उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या करना है, बाबा से हर रोज हमें वरदान मिलता है, एक दिन तो उस वरदान को यूज करो। एक दिन तो यूज कर सकते हैं ना। सतगुरु के संबंध में हम अपने ऐसा कोई कर्म न करें जिससे सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, ऐसी स्थिति में हमें जाना पड़े। और बाबा कहता है नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, तो बाबा की नजरों में हम समाये रहें सतगुरु के साथ। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सारा दिन के अंदर जब तुम कर्म करते हो तो कर्म करते हुए बार बार बाबा से कभी हम फ्रेंड, हमारा मित्र है, मित्र के रूप में हर बात किसी भी आत्मा को न सुनाकर बाबा को सुनाए। ऐसे होता है, क्योंकि जो हमारा जिगरी फ्रेंड है उस जिगरी फ्रेंड के आगे हर बात निकलती, भूल की होगी तो भी सुनाएंगे, अच्छा किया होगा तो भी सुनाएंगे, सबसे पहले हमें वो याद आएगा। मुझे एक बार बड़ी दीदी ने ऐसे पूछा कि तुम्हारी दिल की सखी कौन है, तो मैं दीदी को पूछा, मैंने कहा दिल की सखी किसको कहते हैं, पहले मुझे परिभाषा ख्याल हो तो मैं दीदी को जवाब दूं। तो दीदी ने कहा अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले जो तुमको याद आए कि मैं उसको सुनाऊं वो तुम्हारी दिल की सखी है। कोई अच्छी चीज तुमको खाने के लिए मिली तो सबसे पहले तुम्हें वो याद आए कि मैं उसके लिए रखूं, वो तुम्हारी दिल की सखी है। कोई अच्छी चीज तुम खरीदती हो तो फट से तुमको याद आता है मैं उसके लिए भी लूं, ये हमारे दिल की सखी है। आपके दिल की सखी हम अपने दिल का सखा किसको बनाएं, बाबा। बाबा मेरा ऐसा फ्रेंड है, खुदा को क्या बनाओ, दोस्त बनाओ। और उस दोस्त के साथ इतनी पक्की दोस्ती, हर रोज बाबा को लेटर लिखो, बाबा से वो बातें करो, चलते फिरते बाबा को सुनाओ, ये मेरा खुदा दोस्त है। आप सोचो ये एक साधारण बात नहीं है, खुदा को दोस्त बना लेना या खुदा हमारा दोस्त बन जाए और वो दोस्त हमारे साथ में दोस्ती निभाए, साधारण बात नहीं है। लेकिन जब तक हम उसके साथ साधारण रीति से चलते हैं तो उसका गहरा अनुभव नहीं कर पाते। मेरे दिल की हर बात सुनाने के लिए खुदा को दोस्त की रीति से यूज करो, इस संबंध को निभाओ। तो अगर खुदा मेरा दोस्त बन गया, आपको कभी भी किसी व्यक्ति की याद नहीं आएगी, मैं उसको ये बात सुनाऊं, मैं उससे ऐसा करूं, क्योंकि खुदा मेरा दोस्त है। और सचमुच में बाबा दिल की हर आवाज सुनता है। वो फ्रेंड कभी आपसे किसी बात से नाराज भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रेंड, ये साथी कभी नाराज नहीं होता। आप में से जिन्होंने बाबा के साथ फ्रेंड का अनुभव किया है, हाथ खड़ा करो। सारे अनुभवी। तो दूसरा कोई याद तो नहीं आता है, दूसरा कोई याद नहीं आता है। या दोनों के साथ दोस्ती है, दोस्त के साथ भी दोस्ती है और खुदा दोस्त के साथ भी दोस्ती है, दोनों दोस्त हैं। जिनके दोनों दोस्त हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिसका सच्चा खुदा दोस्त है वो हाथ खड़ा करो। वो दोस्त है केवल दोस्ती निभाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं, वो निभाना है। क्योंकि जब आप सर्कल में हैं, हमारे बाजू की सीट पर जो बैठी हुई है उसके साथ हम बातचीत करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो केवल निभाना है। लेकिन दिल की जो बातें हैं वो केवल मुझे खुदा दोस्त से ही करनी। ये खुदा दोस्त कभी आपको धोखा नहीं देगा। कभी माँ के संबंध से बाबा को याद किया है, बाबा मेरी माँ है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया, हमें अडॉप्ट किया। ब्रह्मा बाप दादा, बाबा की गोदी में चले जाओ, ऐसे माँ की गोद में सो जाओ, माँ की प्यार भरी लोरी का हाथ आपके ऊपर घूम रहा है। कभी भी आपको उस लौकिक माँ की याद नहीं आएगी। माँ साथ में रहेगी, लेकिन जो मोह का बंधन है वो बंधन आपका कट जाएगा, क्योंकि आपने बाप को माँ के रूप में स्वीकारा है। जैसे जैसे आप बाबा माँ, ब्रह्मा माँ हैं, बाप दादा की गोदी में है, वो माँ की संपूर्ण पालना का अनुभव, जैसे माँ हमारी एक एक बात का ध्यान रखती है। हम अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो सुबह माँ हमको उठाएगी, हम अगर पढ़ रहे हैं तो माँ बैठ करके जागेगी। ये सारी अनुभूति बाबा हमें कराता है। सुबह में बाबा हमारी खटिया हिलाता है। हिलाता है आपकी खटिया बाबा? हिलाता है। फिर आप क्या करते हैं? हाँ, उठ जाते हैं। या बाबा अभी माँ के साथ में नखरा भी करते हैं ना, अभी उठती हूँ, और अभी उठती हूँ कह करके सो गए, माना एक घंटे से पहले नहीं उठेंगे। इस माँ ने उठाया, ये तो उठा करके चली गई, माया ने आकर के हाथ फेराया, सो जा बच्ची सो जा। तो माया से प्यार है या माँ से प्यार है? माँ से प्यार है। जैसे माँ उठाती है, फट से आंख खोलो, बाबा की गोद में चले जाओ। तो माँ माँ होती है, और उस माँ से जब आप प्रेम से बैठेंगे, वो प्रेम के आंसू, इस माँ ने मेरे लिए, माँ के गीत तो बहुत सारे सुने हुए हैं ना, ये माँ भी हमारे लिए सारी सारी रात जागी है। बाबा ने हमें पढ़ाने के लिए, पहले तो अव्यक्त बाबा कितना सारी रात जागता था, सारी रात बाबा की मुरली चलती थी। जिन्होंने सारी रात बाबा को जागते हुए देखा है वो हाथ खड़ा करो। थोड़े कोई दो चार हैं। बाबा शाम को 6:30 बजे से लेकर के सुबह 6:30 बजे तक बैठा रहता था। क्या माँ की ममता। हम भी ऐसी माँ माँ की गोद में सो जाए, चाहे तो हर रोज, कई ऐसे अभ्यास भी करते हैं कि सोमवार के दिन हम आज इस संबंध का अनुभव करेंगे, मंगलवार के दिन इस संबंध का अनुभव करेंगे, फिर इसका अनुभव करेंगे, अलग 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 एक एक संबंध की अनुभूति करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ हमारा बाबा से जिगरी प्यार होना उसकी निशानी है, मैंपन को खत्म करना। और जहाँ मैंपन खत्म हो जाता है, अभी थोड़ा दिन पहले की मुरली में बाबा ने स्लोगन में ये कहा था, जहाँ मैंपन खत्म अर्थात सर्व संबंध संबंधी मेरा बाबा। तो ऐसे बाबा से हम चलते फिरते उठते बैठते हर संबंध को निभाएं। और बाबा ने जो हर संबंध की आज्ञा दी है, पिता की रीति से हमें क्या करना है, पिता के संबंध में बाबा की क्या आज्ञा है, हाँ, पिता से फरमानदार, हाँ, पिता से वफादार, अच्छा, और पिता से आज्ञाकारी। वही बेटा बाप को प्यारा लगता है जो बाप की आज्ञा का पालन करता है। हमें अपने बाबा का शो करना है। आज संबंधों की अनुभूति न होने का मूल कारण हम बहुत सारी अवज्ञाएं करते हैं, और हम वो अवज्ञाएं करते हैं जिसकी हमें संपूर्ण नॉलेज है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, जानते हुए भी हमारे से वो कर्म हो रहे हैं, जिसको बाबा विकर्म कहता है। और उस विकर्म के बोझ के कारण ये सारी समझ होते हुए भी हम ये गहरी अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं। है ऐसा, अवज्ञाएं होती हैं हमारे से, होती हैं अवज्ञाएं, होती हैं। आंख खुले और आंख बंद हो तब तक के लिए जो श्रीमत है, केवल एक दिन आप अपने चार्ट को देखो, आपको ये महसूस होगा कि सचमुच मैं इतनी सारी अवज्ञा कर रही हूं। नहीं तो बाबा का बनने के बाद निश्चय में हम हाथ पक्का खड़ा कर रहे हैं, हमको ये पक्का निश्चय है हम भगवान की संतान हैं, मेरा तो एक बाबा है दूसरा ना कोई। हम रोज मुरली की स्टडी कर रहे हैं, हम हर रोज अमृत वेला कर रहे हैं, वो सब कुछ करने के बाद क्यों हमें वो ईश्वरीय नशा और ये अनुभूति नहीं हो रही है, कोई तो कारण होगा ना। क्यों बार बार हमारे में अलवेलापन आ रहा है। तो बाबा ने एक तो ये मैंपन है, और दूसरा बाबा ने कहा ईर्ष्या। ईर्ष्या से आलस और अलवेलापन आता है। दिनचर्या के अंदर अवज्ञाएं, कहना एक, समझना एक और करना दूसरा, ये बोझ हमें इन संबंधों की अनुभूति नहीं करने देता है। तो उसका जो मूल आधार, हम अपने निज स्वरूप का गहरा अभ्यास करें। मैं आत्मा हूं इसको समझा जरूर है लेकिन स्वरूप में नहीं लाया। जितना इस आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप लिख करके करो चाहे आप बार बार उसको चिंतन से करो। हमारी दादियों ने इसका बड़ा गहरा अभ्यास किया है, लिख लिख करके बैठ बैठ करके ये अभ्यास करते थे। मुझे बार बार इस बात में आत्मिक चिंतन का, मैं खुद भी अभ्यास करती हूँ तब, और ये हमारी एक टिकन दादी थी, हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में, उनका एक शब्द हमेशा याद रहता है। वो कहती थी, अरे लाल तुमको क्या मालूम है, हमने तो इस आत्मा की चटनी कर दी थी चटनी। समझा? आप सोचो चटनी की माना, चटनी एकदम महीन होती है, बार बार पीसा जाता है तब चटनी बनती है। हमें भी इस आत्मिक अभ्यास के लिए चटनी बनानी पड़ेगी। कोई कारण नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। हिम्मत दे बच्चे मत दे बाबा। और सचमुच मुझे कई बार लगता है हम मेहनत क्यों करते हैं, जहां हम कह रहे हैं भगवान हमारा साथी है, प्यार का सागर बाबा हमारा साथी है, वो प्यार मोहब्बत हमें मेहनत से मुक्त कराएगी। तो हमारे में अभी अभाव किस चीज का है, मोहब्बत की कमी है। और मोहब्बत क्यों कम है, क्योंकि अभी तक हमने आत्मिक स्वरूप को यथार्थ रीति से अनुभव में नहीं लाया है। संकल्पों के द्वारा थोड़ा समय अभ्यास करके हम उसको छोड़ देते हैं, तो बार बार बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए निश्चय, नशा और आत्मिक स्वरूप की स्मृति, इन तीनों चीजों को आप डेली चेक करते रहेंगे तो सहज स्वाभाविक हर संबंध का अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से मम्मा को सामने रखते हुए एक बात सुनी थी, मम्मा को ये लास्ट में पूरा करते हुए सुनाती हूँ क्योंकि कल मम्मा का दिन है। मम्मा को किसी ने कहा कि मम्मा आप इतना आगे कैसे बढ़ गई। मम्मा ने तीन बातें सुनाई। एक तो मम्मा ने कहा कि मम्मा को अटूट निश्चय है बाप में। दूसरा मम्मा ने कहा कि मम्मा सदा आज्ञाकारी और वफादार रही। अटूट निश्चय, आज्ञाकारी और वफादार। दूसरा मम्मा ने कहा, कभी भी मैंने अमृत वेला मिस नहीं किया, यथार्थ स्वरूप में अमृत वेला किया। जो हम सुनते हैं ना, कैसे मम्मा 2:30 बजे उठ करके बैठती थी, ऐसे बल्ब का प्रकाश निकल रहा हो, ऐसे आंखों से तेज निकलता था, ऐसा अमृत वेला मम्मा ने हमेशा किया। और कभी कोई भी बहाना नहीं, 2:30 बजे उठना माना उठना, बैठना मीन्स बैठना, उस स्वरूप में बैठना। और तीसरा मम्मा ने कहा कि मैंने कभी भी इस रोया नहीं। ये तीन धारणाएं, विशेषताएं तो बहुत ढेर सारी मम्मा के जीवन की थी, लेकिन इनके आधार पर और उसकी गहराई में जाए तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ये तीन धारणा मम्मा की विशेष रही। और हमेशा मम्मा ने बाबा से साथीपन का, सर्व संबंधों का रस लिया। तो आप सब भी ऐसे साथीपन का और सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसको सार्थक करें अनुभव के द्वारा। ओम